डॉक्टर क्रेग कीनर मैथ्यू व्याख्यान 7 मैथ्यू 5 पर्वत पर उपदेश 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह माउंट पर उपदेश मैथ्यू 5 पर सत्र 7 है। जैसे ही हम पर्वत पर उपदेश की ओर मुड़ते हैं, हमें इसके लिए निर्धारित पूर्ववर्ती संदर्भ को ध्यान में रखना होगा, जिसे हमने पिछले निबंध में संक्षेप में प्रस्तुत किया है। यीशु की शिक्षा का सारांश पश्चाताप और आने वाले राज्य का प्रकाश था। अपनी बारी पर पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की तरह भविष्य के युग के लिए तैयार हो जाइए। और फिर यीशु का यह संदेश, जैसा कि 4:17 में संक्षेपित किया गया है, 5 मुख्य प्रवचन खंडों में प्रस्तुत किया गया है, राज्य की नैतिकता, राज्य की घोषणा, राज्य की उपस्थिति पर जोर देने वाले दृष्टांत, उनमें से 7 या 8 राज्य में रिश्ते, और फिर भविष्य का राज्य और न्याय और धार्मिक स्थापना। इसके उस खंड में 7 या 8 दृष्टांत भी हैं, लेकिन वे 7 या 8 दृष्टांत राज्य की उपस्थिति के बजाय उसके भविष्य से संबंधित हैं। तो मैथ्यू 5 से 7 में यह खंड विशेष रूप से राज्य की नैतिकता, परमेश्वर के राज्य और पश्चाताप कैसा दिखता है को संबोधित करता है। यह प्रवचन और 23 से 25 तक का प्रवचन, या यदि आप इसे 24 और 25 गिनना चाहें, तो वे सबसे लंबे प्रवचन हैं, पहले और आखिरी प्रवचन। पर्वत पर उपदेश की कई व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। इसके प्रति अधिक शाब्दिक दृष्टिकोण था, जो डेजर्ट फादर्स, सेंट फ्रांसिस और एनाबैप्टिस्ट द्वारा नागरिक कानून के संबंध में रखा गया था, न कि शपथ लेने या डेजर्ट फादर्स द्वारा स्वर्ग में हमारे खजाने के कारण सब कुछ बलिदान करने आदि के संबंध में। मध्ययुगीन दृष्टिकोण आमतौर पर पादरी वर्ग के लिए एक उच्च नैतिकता थी। पादरी को माउंट पर उपदेश पूरा करना था, लेकिन यह हर किसी के लिए अपेक्षित नहीं था, क्योंकि इसे हर किसी के लिए असंभव माना जाता था। तब कानून बनाम अनुग्रह की व्याख्या थी। खैर, यह कानून की तरह है, और इसका उद्देश्य आपको यह दिखाकर अनुग्रह की ओर ले जाना है कि इसे बनाए रखना असंभव है। और फिर उदार सामाजिक सुसमाचार दृष्टिकोण था। इस प्रकार हमें समाज को इसके अनुरूप बदलना चाहिए। और फिर व्यवस्थागत दृष्टिकोण, जिसने कहा, ठीक है, यह इस व्यवस्था के लिए नहीं है, यह एक अलग व्यवस्था के लिए है, पहले वाली व्यवस्था के लिए है। अंतरिम नैतिकता, आसन्नता में एक गलत धारणा, अल्बर्ट श्वित्जर की, यीशु का मानना था कि राज्य के आने से पहले, पारूसिया से पहले आपको बस थोड़े समय के लिए इसी तरह जीना था। और यीशु को उम्मीद थी कि अब कोई भी दिन आएगा, और ऐसा नहीं हुआ। और फिर अस्तित्ववादी दृष्टिकोण है, विशेष रूप से रुडोल्फ बुल्टमैन इसके लिए प्रसिद्ध थे, जहां यह निर्णय की मांग है। इसका उद्देश्य केवल आपको ईश्वर के प्रति आमूलचूल तरीके से प्रतिक्रिया देने की चुनौती देना है। खैर, इनमें से कई में कुछ सच्चाई हो सकती है, और शायद इन सभी में पूरी तरह सच्चाई नहीं भी हो। मेरा मतलब है, शाब्दिक अर्थ हमें उसी तरह चुनौती देता है जिस तरह यीशु हमें चुनौती देना चाहते थे। सर्मन ऑन द माउंट में बहुत अधिक अतिशोक्ति है। अतिशोक्ति एक अतिशोक्तिपूर्ण अतिशोक्ति है, जिससे बात स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, यदि आप इसे शाब्दिक रूप से लेते हैं, तो यह निश्चित रूप से बात को स्पष्ट कर देता है। यह आपका ध्यान वैसे ही खींचता है जैसे संदेश मूल रूप से होता। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं, ठीक है, जैसा कि हम देखेंगे, शायद पूरी तरह से शाब्दिक रूप से लेने के लिए नहीं थीं। लेकिन हम उन लोगों की सराहना कर सकते हैं जिन्होंने इसे अक्षरशः लेते हुए मूल्यों पर जोर दिया है। पादरी वर्ग के लिए पदानुक्रम, मुझे वास्तव में यकीन नहीं है कि आप इस अनुच्छेद से इसे समझ पाएंगे। यीशु शुरुआत में शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन हम संदेश के अंत में देखते हैं कि वह भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। तो यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सुन रहा है, और शिष्य वास्तव में सिर्फ पादरी नहीं है। शिष्य हम सभी हैं जो यीशु का अनुसरण करते हैं। कानून बनाम अनुग्रह ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि यह यीशु का कहना था, लेकिन इसका वह प्रभाव हो सकता है। निश्चित रूप से, जैसा कि हम चुनौतियों को देखते हैं, यह हमें ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करती है। खैर, उदार सामाजिक सुसमाचार का समाज पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हर कोई जी सके। यह कुछ ऐसा है जिसे उन लोगों द्वारा जीना चाहिए जो यीशु की शिक्षाओं का पालन करने के इच्छुक हैं। मेरा मतलब है, आप हर किसी को दूसरा गाल आगे करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन केवल वही लोग वास्तव में इसकी आज्ञाकारिता में दूसरा गाल आगे करेंगे, वे ही होंगे जो यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं। और फिर आपके पास व्यवस्थावादी दृष्टिकोण है, पुराना चुटकुला जो पुराने जमाने के व्यवस्थावादियों के बारे में कहा गया है, न कि प्रगतिशील व्यवस्थावादियों के बारे में, कि एक लड़का लड़ाई करके वापस आता है और उसकी माँ कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम हो दूसरा गाल आगे करना चाहिए? जिस पर वह जवाब देता है, हे माँ, यह केवल यहूदियों के लिए था। लेकिन यह और अंतरिम नैतिकता दोनों कम से कम इस तथ्य पर जोर देते हैं कि यीशु अपने समकालीनों से राज्य के लिए तैयार होने के लिए कट्टरपंथी तरीके से बात कर रहे थे। लेकिन हम अंतरिम नैतिकता के आधार पर यह नहीं मानते कि यीशु ने आसन्नता में अपने विश्वास के बारे में गलती की थी। हमारा मानना है कि वह मांग अभी भी हम पर है। एक दृष्टिकोण जो कई दृष्टिकोणों में से सर्वोत्तम को एक साथ खींचता है, वह उद्घाटन युगांत शास्त्र का दृष्टिकोण है। यह एक लक्ष्य है। यह राज्य में पूर्ण हो गया है। हम अब इसके लिए काम करते हैं। हम अब इसे अपने जीवन में पालन करना चाहते हैं। यह अब पश्चाताप वाली जीवन शैली है, लेकिन अंततः यह एक जीवन शैली है जिस तरह से राज्य होगा, जहां हम इस प्रकार के लोग होंगे। लेकिन हम अब इस प्रकार के लोग बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि राज्य पहले ही आ चुका है और अभी भी नहीं आया है, क्योंकि यीशु पहले ही आ चुके हैं और आ रहे हैं। आरंभिक ईसाइयों ने इसकी शाब्दिक आज्ञाकारिता की मांग की थी। यह सामान्य दृष्टिकोण था जो हम चर्च फादर्स में पाते हैं, लेकिन उन्होंने इसे कानूनी तौर पर नहीं किया। उन्होंने इसे राज्य के प्रति आज्ञाकारिता के संकेत के रूप में किया, हमेशा चर्च के पिताओं में नहीं, लेकिन निश्चित रूप से नए नियम में। यह डेबेलियस द्वारा इंगित किया गया है, स्टेनली हावरवास और अन्य द्वारा इंगित किया गया है। यदि हम इस भाषण को अलंकारिक रूप से देखें, तो अब यह ग्रीको रोमन भाषण नहीं है, और इसे उन शब्दों में बहुत आसानी से वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, हालांकि कुछ लोगों ने ऐसा करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर हमने यह वर्गीकृत करने का प्रयास किया कि इस बयानबाजी का कार्य क्या है, इस भाषण का कार्य क्या है, तो यह विचार विमर्श होगा, अर्थात हम पर अपनी मांगे रखना, हमें एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए आमंत्रित करना। आज इसे नए सिरे से सुनकर हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह सिर्फ नैतिकता नहीं है, यह क्राइस्टोलॉजी भी है। अध्याय 7 श्लोक 21 से 27 में चरमोत्कर्ष यीशु की आज्ञा मानने से संबंधित है, और कैसे हमें पिता द्वारा यीशु के शब्दों के प्रति समर्पित होने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन हमें नैतिकता के संबंध में इसकी संपूर्ण उग्रता और हमारे जीवन पर इसकी मौलिक मांगों को सुनने की भी आवश्यकता है। हमारे लिए यह कहना उचित नहीं है कि यह सिर्फ अतिशयोक्ति है, इसलिए मैं इसे खारिज कर सकता हूं। यह अतिशयोक्ति की बात नहीं है। अतिशयोक्ति का उद्देश्य हमारा ध्यान आकर्षित करना और हमें चुनौती देना है, और हमें उसे ऐसा करने देना होगा। लेकिन हमें सुसमाचार के कथात्मक संदर्भ को भी ध्यान में रखना होगा। यह अनुग्रह से अनुकूलित है, हम में से उन लोगों के लिए जो आत्मनिरीक्षण करते हैं और विशेष रूप से हम में से जो खुद को नीची दृष्टि से देखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं, ओह, मुझे यह अधिकार कभी नहीं मिल सकता। हमें अनुग्रह के संदेश को याद रखने की जरूरत है जो हमें सांत्वना देता है। यह सुसमाचार के एक बड़े संदर्भ का हिस्सा है। लेकिन जो लोग अपनी धार्मिक उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, जो दूसरों को उनके जितना धार्मिक न होने के कारण ही दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए इसे एक चुनौती के रूप में सुना जाना चाहिए जो हम सभी को एक ही स्तर पर खड़ा करती है। हम सभी को कृपा की आवश्यकता है। अब मैथ्यू और ल्यूक में कहावतें पूरी तरह से एक ही क्रम में नहीं हैं। मैथ्यू 5-7 अधिकांश सामग्री आपको ल्यूक 6 में मिलती है, लेकिन आप इसे ल्यूक 13 इत्यादि के कुछ अन्य अंशों में भी पाते हैं। लेकिन याद रखें, कहावतों की पुनर्व्यवस्था आम बात थी। किसी की शिक्षा के प्रतीक या सारांश कथनों को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, मुद्दा वह नहीं था। उन्हें शीर्ष रूप से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यह तथ्य कि मैथ्यू और ल्यूक अक्सर सामान्य अनुक्रम में होते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि यह दोनों में बिल्कुल वही क्रम है या बिल्कुल वही क्रम है जिसमें यीशु ने इसे कहा था या यीशु को ऐसा करना पड़ा था। यह सब एक ही अवसर पर बोले, क्योंकि यह बिल्कुल वैसे नहीं है जिस तरह से ये बातें लिखी गई थीं। लेकिन इनमें से कई बातें एक ही मौके पर कही गई लगती हैं। हम इसे मैथ्यू और ल्यूक की तुलना करके देख सकते हैं। पुनर्व्यवस्था के लिए बयानबाजी की भी अनुमति है। और जब रब्बी उपदेश सुनाते थे तो वे उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में नहीं पढ़ते थे, वे विभिन्न स्थानों से शिक्षाएं प्राप्त करते थे। फिर जीवनियां कालानुक्रमिक क्रम में नहीं थीं। इसलिए यदि कोई इसे देखता है और कहता है, वाह, यह इस सुसमाचार की तुलना में इस सुसमाचार में एक अलग स्थान पर है, तो इसके बारे में चिंता न करें, लोगों ने इसी तरह लिखा, यही अपेक्षित था। यीशु की शिक्षाएं, जैसे ही हम पहाड़ी उपदेश शुरू करते हैं, मैं यीशु की शिक्षाओं की प्रकृति पर थोड़ा गौर करना चाहता हूं, और मैं प्रश्नों के लिए कुछ मुद्दे उठाऊंगा जिन्हें मैं बाद में बेहतर तरीके से हल करूंगा, लेकिन मैं उन्हें यहां उठाऊंगा। यीशु की शिक्षाएं, पुराने नियम के कुछ अलग अलंकारिक रूप हैं जो यीशु की शिक्षाओं में काम आते हैं, और उनमें से कुछ यीशु के समय तक पुराने नियम से परे विकसित हो गए थे, जो आमतौर पर अन्य यहूदी संतों द्वारा उपयोग किए जाते थे। तो ये संचार के परिचित तरीके थे, लेकिन आमतौर पर आपके पास कोई ऋषि होगा, आपके पास कोई पैगंबर होगा, वे बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। लेकिन यीशु और उसका व्यक्तित्व शिक्षण की कई अलग अलग शैलियों को एक साथ लाते हैं। उदाहरण के लिए, वह एक ऋषि की तरह कहावतों और दृष्टांतों का उपयोग करता है। पुराने नियम के ऋषियों ने और अंतरिम काल में भी, जैसे सिराज की पुस्तक इत्यादि में, यहूदी संतों ने इन रूपों का उपयोग करना जारी रखा और इन रूपों को विकसित किया। और फिर भी यीशु तुम पर शोक जैसी बातें भी कहते हैं, कफरनहूम। वह भविष्यवक्ता की तरह बोलता है और मंदिर में न्याय की बात करता है, इसलिए वह कुछ हद तक दैवज्ञ बोलता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मिड्रैश हैं, जहां यीशु धर्मग्रंथ की व्याख्या करते हैं या वह फरीसियों के साथ धर्मग्रंथों पर बहस करते हैं। अधिकांश यहूदी संतों की तरह यीशु की शिक्षाओं में विशिष्ट और सामान्य दोनों विशेषताएं थीं। आमीन, मैं तुमसे कहता हूं। ठीक है, आप जानते हैं, आमीन, आप इसे प्रार्थना के अंत में कह सकते हैं, लेकिन आप आम तौर पर इसके साथ अपने वक्तव्य की शुरुआत नहीं करते हैं। यह यीशु के अधिकार की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति है। कई अन्य रब्बियों के विपरीत, यीशु पहले की परंपराओं का हवाला नहीं देते हैं। वह यह नहीं कहता है, ठीक है, रब्बी अकीबा योचानन बेन जेकाई का हवाला देते हुए, हिलेल का हवाला देते हुए, शेमिया और ओक्टेलियन का हवाला देते हुए, या ऐसा कुछ। वह बस इतना कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, वह ऐसे बोलता है मानो अपने अधिकार से बोलता है, या सीधे पिता के अधिकार से अपील करता है। यीशु के बारे में एक और बहुत विशिष्ट बात यह है कि अन्य रब्बी यह संकेत नहीं देते थे कि वे भगवान थे, लेकिन कुछ अन्य अभिव्यक्तियां जो यीशु ने इस्तेमाल की उनके समय में बहुत आम थीं। अन्य शिक्षकों के बीच दृष्टांत और कहावतें आम बात थीं। श्रोताओं का ध्यान खींचने के लिए अतिशयोक्ति, एक आलंकारिक अतिशयोक्ति, बहुत आम थी। यह यीशु के लिए अद्वितीय नहीं है। यह आज की अपेक्षित शिक्षण शैली का हिस्सा है। उदाहरण के लिए हास्य, जब आपकी अपनी आंख से एक बड़ा पेड़ चिपक गया हो तो किसी और की आंख से तिनका निकालने की कोशिश करना, और अन्य प्रकार के ग्राफिक उपकरण जैसे दांत पीसना और लोगों को काटा जाना। आप जानते हैं, बोलने के लिए उनके पास दृश्य सामग्री नहीं थी, लेकिन जब वे बहुत ग्राफिक छवियों का उपयोग करके बोलते थे तो वे लोगों की कल्पना को आकर्षित कर सकते थे, जो लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे और उनके दिमाग में रहते थे। यीशु की प्राचीन यहूदी बयानबाजी की प्रकृति, अतिशयोक्ति आदि को देखना, यीशु के बोलने का ग्राफिक तरीका। खैर, हम यीशु के शब्दों को अक्षरशः कहाँ तक दबाते हैं? खैर, यह किन शब्दों पर निर्भर हो सकता है? उदाहरण के लिए यीशु की चेतावनी को लीजिए कि जो कोई पुनर्विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। अब यदि यह शाब्दिक है तो सभी पुनर्विवाह व्यभिचारी हैं। ऐसा नहीं है जैसा कि आजकल कुछ लोग इसे लेते हैं, केवल विवाह। लेकिन नहीं, यह विवाह व्यभिचारी है। इसलिए ईसाई पादरियों को दूसरी शादी और तीसरी शादी तोड़नी होगी, भले ही ये व्यक्ति के धर्म परिवर्तन से पहले हुई हो। इस सिद्धांत के देहाती निहितार्थ की कल्पना करें। अब यदि कोई इस वीडियो का पिछला भाग नहीं देखता है तो मैं तर्क दूंगा कि वह ऐसा नहीं कह रहा है। हालांकि इसका उद्देश्य हमारा ध्यान आकर्षित करना है, हमें यह सोचने के लिए मजबूर करना है कि हमारी शादी को जोड़े रखना कितना महत्वपूर्ण है, जहां तक यह हम पर निर्भर करता है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यीशु नियमित रूप से ग्राफिक छवियों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए उस राजा के बारे में सोचिए जिसके एक सेवक पर 10,000 प्रतिभाओं से अधिक का कर्ज हो जाता है। यह संभवतः रोमन साम्राज्य को छोड़कर उस समय किसी भी देश में प्रचलन में मौजूद कुल धनराशि से अधिक थी। कौन सा राजा किसी को इतना कर्जदार होने देगा? जाहिर है इस राजा के पास सर्वोत्तम गणित कौशल नहीं है, है ना? लेकिन यह दिखाने का एक ग्राफिक तरीका था कि हमने अनंत भगवान के खिलाफ कैसे पाप किया है और इसलिए भगवान के सामने हमारा कर्ज अनंत है। या उस नौकर के बारे में क्या ख्याल है जिसने अपने साथी नौकरों के साथ दुर्व्यवहार किया? अपने समय की धार्मिक स्थापना की निंदा करने के बाद यीशु ने हमें ऐसा न बनने की चेतावनी दी। वह कहते हैं, जब वह दोबारा आएंगे तो ऐसे अपमानजनक मंत्रियों को टुकड़ों में काट दिया जाएगा और नरक में फेंक दिया जाएगा। यह काफी ग्राफिक इमेजरी है। यीशु की शिक्षाओं के एक पूर्व समीक्षक डायट्रिच बोनहोफर, जो नाजियों के अधीन शहीद हो गए थे, उन्होंने नाजियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने क्रॉस ऑफ डिसिप्लिनशिप में अमीर युवा शासक के बारे में लिखते हुए बताया कि धर्मशास्त्रियों ने अक्सर अधिक खर्च किया है यह पता लगाने की बजाय कि हम इसके संदेश का पालन कैसे कर सकते हैं, इस परिच्छेद से बचने का प्रयास कर रही हैं। सोरेन कीरकेगार्ड उससे पहले एक दार्शनिक थे और वह सहमत होंगे। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं, आज के बड़े पैमाने पर बाइबल व्याख्याकारों ने बाइबल की हमारी समझ को मदद करने की बजाय नुकसान पहुंचाया है। यीशु ने कहा, यदि तुम परिपूर्ण होना चाहते हो तो अपने पास जो कुछ भी है उसे बेच दो और गरीबों को दे दो। यह अमीर युवा शासक को संबोधित है। और कीर्केगार्ड ने कहा कि वाह, अगर हमने ऐसा किया तो हम सभी भिखारी बन जाएंगे, पूरा समाज। यदि ईसाई छात्रवृत्ति न होती तो हम डूब जाते। खुशी की बात है कि विद्वान हमें दिखाते हैं कि हम यीशु की शिक्षाओं के निहितार्थों से कैसे निपट सकते हैं। और हम प्रोटेस्टेंट चाहते हैं कि हर किसी के पास अपनी भाषा में बाइबिल हो। और फिर जब हम उन्हें यह देते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि इस पर विश्वास न करें। जब यह गरीबों की देखभाल आदि के बारे में बात करता है तो इसके संदेश को आगे न बढ़ाएं। यदि हम यीशु के शब्दों को सुनते हैं तो उन्होंने बताया, यह हमें उसी तरह परेशान कर सकता है जैसे उन्होंने उसके कुछ समकालीनों को परेशान किया था। मेरा मतलब है, यह सिर्फ अमीर युवा शासक के लिए नहीं था, बल्कि लूक अध्याय 14 श्लोक 33 में वह अपने सभी शिष्यों से कहता है, यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है तो वह अपनी सारी संपत्ति छोड़ दे। आप जानते हैं, चर्च के कई लोग आज भी यीशु को पसंद नहीं करते होंगे। वैसे भी इन सब के साथ मेरा कहना यह है कि राज्य की मांगे कट्टरपंथी हैं, और इसमें से कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, लेकिन हमें इसे हमें संबोधित करने और हमें चुनौती देने की आवश्यकता है। इस संदेश की सेटिंग में यीशु पहाड़ पर बैठे थे। अब मैथ्यू में यह एक पहाड़ है, लूक में यह एक समतल स्थान है। वे एक साथ कैसे फिट होते हैं? खैर, यहूदिया और गलील में पहाड़ी प्रदेश बहुत आम था, और पहाड़ी प्रदेश में कुछ समतल स्थान थे, कुछ समतल स्थान थे, तो आप इसे पहाड़ी कह सकते हैं। पहाड़ शब्द उसे कवर कर सकता है, और यह किसी पहाड़ी क्षेत्र का पठार भी हो सकता है। पहाड़ी भाषा को प्राथमिकता देता है। मैथ्यू के सुसमाचार में बहुत सी चीजें एक पहाड़ पर घटित होती हैं। केवल रूपांतरण ही नहीं, बल्कि बहुत सी चीजें। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह मूसा द्वारा पहाड़ से टोरा देने जैसा है, क्योंकि यीशु टोरा की व्याख्या करने जा रहे हैं और एक नए टोरा जैसा कुछ देने जा रहे हैं, जैसा कि कई लोग देखते हैं। यीशु उन लोगों से महान है जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, मत्ती 23:2। वह पढ़ाने क्यों बैठे? आप यही चीज लूक अध्याय 4 में नाजरेत के आराधनालय में देखते हैं, जहां यीशु पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और उपदेश देने के लिए बैठते हैं। कम से कम उन्नत शिक्षकों के लिए यही प्रथा थी। प्राथमिक शिक्षक भी पढ़ाने के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन आदरणीय वरिष्ठ शिक्षक जब पढ़ाते थे तो बैठते थे। मुझे लगता है कि मैं आज एक प्राथमिक शिक्षक हूं। यीशु के श्रोता। खैर, 4:25 से 5:1 तक वह भीड़ से बात कर रहा है। 7:28 और 29 में स्पष्ट रूप से भीड़ उन्हें सुन रही है, लेकिन वह 5:1 और 2 में सीधे शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ जो निहितार्थ पाते हैं, कुछ कहते हैं, क्या यह केवल विश्वासियों के लिए है, या शायद केवल शिष्य ही इसे जी सकते हैं। अंततः मुझे लगता है कि हमें उस बात को ध्यान में रखना होगा जो पॉल ने 1 कुरिन्थियों 5 में भी कहा है। वह कहता है, मुझे उन लोगों से क्या लेना देना है जो चर्च के बाहर हैं? जो निर्देश मैं आपको दे रहा हूं उनका संबंध उन लोगों से है जो चर्च के अंदर हैं। पूरे समाज में ईसाई शिष्य मूल्यों को लागू करना, समाज को यह बताना हमारी भूमिका नहीं है कि यदि कोई आपके खिलाफ युद्ध करता है या ऐसा कुछ करता है तो आपको दूसरा गाल आगे कर देना होगा। अब यह आदर्श हो सकता है, लेकिन अगर लोग शिष्य नहीं हैं, तो वे उस तरह से नहीं रहेंगे। लेकिन शिष्यों के रूप में हमारे लिए मांगे अधिक हैं, क्योंकि हम ही वह हैं जो वास्तव में वह सुनने वाले हैं जो यीशु हमसे कहना चाहते हैं। बीटेक्यूर्स 5:3-12। दर्शकों को उत्साहित करने के लिए एक कविता का होना आम बात थी जो ग्रीक अलंकारिकता और रोमन अलंकारिकता में सच थी। यह एक समान तरीके से कार्य कर सकता है, लेकिन यह एक साहित्यिक रूप भी है जो पुराने नियम में आम था। उदाहरण के लिए आप इसे भजन 119 की शुरुआत में पाते हैं। वह व्यक्ति कितना धन्य है, या वह व्यक्ति कितना खुश है, या उस व्यक्ति के लिए कितना अच्छा होगा जो ऐसा और ऐसा काम करता है के लिए, और फिर यह आशीर्वाद का वर्णन करता है। वह एक साहित्यिक विधा थी। यह प्रारंभिक यहूदी धर्म में भी जारी रहा। कभी कभी आपके पास यह ग्रीक दुनिया में होता है, लेकिन विशेष रूप से यहूदी साहित्यिक रूप और अलंकारिक रूप में। इनमें से पहले 4 आनंद में प्रशंसा का उद्देश्य ग्रीक में पी से शुरू होता है। तो इसे ऐसे तरीके से रखा गया है जो वास्तव में ग्रीक में आपका ध्यान खींचेगा, और निःसंदेह यहूदी संदर्भ में संपूर्ण परमानंद रूप एक मानक पारंपरिक अलंकारिक रूप के रूप में आपका ध्यान आकर्षित करेगा। बीटेक्यूर्स का संदेश काफी प्रतिसांस्कृतिक प्रतीत होता है। संस्कृति में कुछ लोग ऐसे थे जो बलपूर्वक राज्य को अपने अधीन लाना चाहते थे, लेकिन यहाँ संदेश यह है कि राज्य टूटे हुए लोगों का है। राज्य दीनों और दीनों का है। राज्य तो दुख देने वालों का है। इसलिए यदि आप कमजोर महसूस करते हैं, तो कभी कभी हमारे जीवन में जब हमें लगता है कि हम सबसे कमजोर हैं, सबसे अधिक टूटे हुए हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है जब भगवान वास्तव में हमारे सबसे करीब होते हैं, और हम उस समय को पीछे मुड़कर देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हमारा विश्वास सबसे अधिक विकसित हुआ। फिर इसलिए नहीं कि हम कौन हैं, बल्कि हम पर ईश्वर की कृपा के कारण। तो इस संदेश को कैसे जिया जाता है, उस पर वापस आते हैं। याद रखें, यह एक सारांश है। खैर, यह 4:17 में सारांश प्रस्तुत कर रहा है। राज्य के आगमन के आलोक में पश्चाताप करो, भगवान की ओर मुड़े, और आपको भविष्य के युग के लिए तैयार होने के लिए इसी तरह जीना चाहिए, क्योंकि यह राज्य की जीवन शैली का अधिक हिस्सा जीना है। राज्य आशीर्वाद। उदाहरण के लिए, नम्र लोगों को पृथ्वी विरासत में मिलेगी। शांति दूतों को ईश्वर की संतान कहा जाएगा। दयालु को दया मिलेगी। मन के दरिद्रों को राज्य मिलेगा। सताए हुए लोगों को राज्य मिलेगा। यह हिंसा से राज्य लेने वाले नहीं हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें अपनी रक्षा के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए भगवान पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसा कि हम अपनी भाषा में कहते हैं। राज्य के आगमन के लिए तैयार लोगों के लिए इसमें एक समावेश है। समावेशन वह है जहां आप एक ही नोट के साथ शुरू और समाप्त करते हैं। आप दोनों बार कुछ ऐसा ही कहते हैं। खैर, 5:3 और 5:10 में यह कहता है, उनका राज्य है। तो ये राज्य आशीर्वाद हैं। ये उन लोगों के लिए आशीर्वाद हैं जो राज्य प्राप्त करेंगे, और बीच में जो लोग शामिल हैं उनमें से कुछ को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, आराम। खैर, यशायाह में यह कुछ युगांतकारी था। यह अंत समय के लिए वादा किया गया कुछ था कि भगवान के लोगों को सांत्वना और सांत्वना दी जाएगी, और हमें वर्तमान में यीशु के मंत्रालय में इसका पूर्वाभास है। उदाहरण के लिए, जायरस की बेटी का पालन पोषण। मैथ्यू में इसमें जायरस का नाम नहीं है, लेकिन आराधनालय के नेता की बेटी के पालन पोषण से आराम मिलता है। लेकिन यह उस प्रकार के आराम का एक पूर्वाभास मात्र है जो ईश्वर हमें आने वाले युग में देगा। इसी प्रकार एक और आशीष यह है कि वह हमारी भूख मिटाएगा। खैर, वह फिर से एक युगांतकारी अंत समय का वादा था, क्योंकि यशाया 25 पुनरुत्थान के समय भविष्य के भोज की बात करता है। और आपके पास वह वादा है जिस पर अन्यत्र जोर दिया गया है, यहूदी साहित्य में बहुत विकसित है, इस अंतिम भोज की अपेक्षा। नए नियम में वह न्यू एक्सोडस वादा किए गए नए युग में अपने लोगों की भूख को संतुष्ट करेगा। वह हमारा भरण पोषण करके हमारी भूख को संतुष्ट करेगा। प्रकाशित वाक्य फल वाले जीवन के वृक्ष की बात करता है जो सभी राष्ट्रों को चंगा करेगा इत्यादि। लेकिन यीशु ने अपने मंत्रालय में इसका पूर्वाभास दिया, 5,000 को खाना खिलाना और 4,000 को खाना खिलाना। लेकिन किसी दिन हम उसे पूरी तरह से हासिल कर लेंगे। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं कि जो दयालु हैं उन्हें दया मिलेगी। खैर, दया एक ऐसी चीज थी जिसे आप वास्तव में अंतिम निर्णय पर पाना चाहते थे, लेकिन हमें इसका पूर्वाभास हो जाता है। उन लोगों को याद करो जो यीशु को पुकारते हैं, हे प्रभु मुझ पर दया करो, और यीशु उन्हें चंगा करते हैं। और यह विचार भी कि वे ईश्वर की संतान कहलाएंगे जो इन मूल्यों का पालन करेंगे और वे ईश्वर को देखेंगे। खैर, वे चीजें पहले निर्गमन से जुड़ी थीं, लेकिन याद रखें, यीशु ऐसा वर्तमान में करता है। यीशु अपने शिष्यों को अपने भाई बहन कहते हैं। ये आशीर्वाद ऐसे आशीर्वाद थे जो केवल दैवीय हस्तक्षेप से आएंगे। हमारे पास कई दैवीय निष्क्रियताएं हैं जो ऐसी बातें कहती हैं जो धर्मी लोगों के साथ घटित होंगी। खैर, वे कैसे होंगे? ये भगवान के आशीर्वाद हैं। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वह भाषा भजन 37 से उधार ली गई है। अब भजन 37 में नम्र लोगों को भूमि विरासत में मिलेगी। लेकिन इस अवधि तक यहूदी व्याख्याकार अक्सर कोल हायरिट्स सारी भूमि सारी पृथ्वी के रूप में शाब्दिक रूप से लेते थे, और उनका मानना था कि पुराने नियम की कुछ अन्य भविष्यवाणियों के अनुसार परमेश्वर के लोगों को सारी दुनिया यानी आने वाली दुनिया विरासत में मिलेगी। और इसलिए संभवतः यीशु का अर्थ उस व्यापक अर्थ में है कि जो नम्र लोग हैं, जो अक्सर सत्ता में बैठे लोगों द्वारा कुचल दिए जाते हैं, जो नम्र हैं, भविष्य उनका है। राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए पूर्वापेक्षाएं। हम उन लोगों पर राज्य थोपने की कोशिश नहीं करते जो इसके लिए तैयार नहीं हैं। हिंसा से राज्य नहीं मिलता, यह जबरदस्ती से नहीं आता। राज्य उन लोगों के लिए है जो इसकी प्रतीक्षा करते हैं, दयालु लोगों के लिए, शांति स्थापित करने वालों के लिए। अब यीशु के समय में इस ज्ञान की पुष्टि वर्ष 70 में की गई थी। वर्ष 66 में जो लोग रोम के विरुद्ध विद्रोह करना चाहते थे, उन्होंने कहा, नहीं, रोम हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है जो सत्य था, और इसलिए यदि हम विद्रोह करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ होंगे। वह विद्रोह यरूशलेम के विनाश और अधिकांश यरूशलेम वासियों और आसपास के क्षेत्र के लोगों की मृत्यु यादास्ता के साथ बहुत बुरी तरह समाप्त हुआ। यीशु की शांति की बुद्धि सही साबित हुई। भगवान उन नम्र लोगों का पक्ष लेते हैं जो अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करते। नम्र लोग संभवतः पहले बाइबल वाक्यांश अनाविम का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि हम मृत सागर स्क्रॉल और अन्य जगहों पर भी देखते हैं, आत्मा में गरीब, टूटे हुए, दीन। कभी कभी यहूदी लोग इसे धार्मिक धर्मप्रायणता से जोड़ते थे, लेकिन विशेष रूप से यह विनम्र होना और खुद पर निर्भर नहीं होना बल्कि ईश्वर पर निर्भर होना था। हम यह भी देखते हैं कि ये उन लोगों पर लागू होते हैं जो सबसे ऊपर परमेश्वर की लालसा रखते हैं और जो धार्मिकता के भूखे हैं। आप भजनों में याद कर सकते हैं, भगवान आप मेरे भगवान हैं, मैं जल्दी ही तुम्हें ढूंढ लूंगा, सूखी और थकी हुई भूमि में मेरा शरीर तुम्हारे लिए तरसता है, या जैसा कि भजनहार कहता है, जैसे हिरण पानी के लिए हांफता है, वैसे ही मेरी आत्मा तुम्हारे लिए तरसती है। जो लोग परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो लोग धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो लोग कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकता। हम भगवान के लिए बेताब हैं। भगवान उन लोगों के करीब है। यीशु कहते हैं, जो लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। कभी कभी इसे शाब्दिक भूख उपवास के साथ व्यक्त किया जा सकता है। उपवास का प्रयोग अक्सर शोक मनाने के लिए किया जाता था। कभी कभी लोग अपने स्वयं के पापों के लिए शोक मनाने या अपने आसपास के समाज की पापपूर्णता को देखकर शोक मनाने और केवल पाप पर विलाप करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन चाहे शारीरिक उपवास हो या नहीं, यशायाह 58 में प्रभु जो उपवास चाहते हैं वह न्याय के लिए काम कर रहा है। लेकिन न्याय की चाहत है। दुनिया में ईश्वर की इच्छा और ईश्वर के उद्देश्यों के लिए चाहत है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोगों के लिए यही सबसे अच्छा है। हम उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि यह सच हो, क्योंकि हमें इसकी परवाह है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पिता सभी के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हैं। शोक यशायाह 61 कहता है कि ईश्वर शोक मनाने वालों को सांत्वना देता है और ईश्वर हमें सांत्वना देगा। वह एक ऐसी दुनिया बनाएगा जिसमें केवल धार्मिकता निवास करेगी। यह भजन 73 से शुद्ध हृदय की भी बात करता है, एक ऐसा भजन जो अकेले ईश्वर पर आशा रखने की बात करता है। इस प्रकार के उपदेश जो यीशु हमें देते हैं, इस प्रकार के वादे यीशु हमें अपनी कृपाओं के साथ देते हैं, हमें अपने दैनिक जीवन में शिष्यों के रूप में चुनौती देते हैं, गाल पर हाथ फेरते हैं, अपने दुश्मनों से प्यार करते हैं। भगवान को हमें सही ठहराना होगा। इन आनंदों का चरमोत्कर्ष राज्य के लिए उत्पीड़न है, 5:10-12। यीशु धार्मिकता के लिए कष्ट उठाने, मेरे कारण कष्ट सहने की बात करते हैं। यह तथ्य कि वह इन्हें एक साथ जोड़ता है बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे कारण कष्ट हो रहा है। यहूदी साहित्य में अन्यत्र आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो धार्मिकता के लिए कष्ट उठाने और ईश्वर या ईश्वर के नाम के कारण कष्ट सहने की बात करते हैं। तो यहां यीशु को दिव्य के रूप में पहचाना जा रहा है, लेकिन यहां हमारे पास पूर्ण चरम सीमा तक गैर प्रतिशोध है। ऐसा नहीं है कि आप जवाबी हमला नहीं करते। यह है कि जब तुम्हें सताया जाता है तो तुम आनंदित होते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास एक बड़ा प्रतिफल है। आपकी रुचि इसमें नहीं है कि लोग आपके साथ क्या करते हैं। आपकी रुचि यह जानने में है कि आप ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं और ईश्वर आपसे प्रसन्न होता है जो पूरे दिल से उसकी सेवा कर रहे हैं। और यीशु अपने शिष्यों की तुलना पुराने पैगंबरों से करते हैं, क्योंकि शिष्य पुराने पैगंबरों की तरह प्रभु की सेवा कर रहे हैं और उनका संदेश घोषित कर रहे हैं। लेकिन बाद में हम 1317 में देखेंगे, यीशु के शिष्य पैगंबरों से भी अधिक हैं। वे चीजें जिन पर भविष्यवक्ता गौर करना चाहते थे। हम यीशु का नाम धारण करते हैं और इसलिए हमें पुराने नियम के पैगंबरों पर भी लाभ है, क्योंकि हमारे पास पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि हम उनके बाद आते हैं, यीशु के बाद, जब हम जानते हैं कि यीशु कौन है। यीशु स्वयं इन धन्यताओं के लिए एक आदर्श हैं। वह धन्य लोगों के बारे में बात करता है जो नम्र हैं। खैर, 11:29 में हम देखते हैं कि यीशु नम्र और दिल से नम्र है, और 21:05 में उस मामले के लिए आपका राजा आपके पास नम्रता से आता है। 11:20-24 में यीशु पश्चाताप न करने वाले शहरों पर शोक मनाते हैं। दयालु होने के संदर्भ में 9:13-27 में लोग दया मांगते हैं। जिस तरह भविष्यवक्ताओं का उपहास किया गया था, उसी प्रकार उपहास किए जाने के मामले में यीशु लोगों पर दया दिखाते हैं। खैर, 26:68 में यीशु का एक झूठे भविष्यवक्ता के रूप में उपहास किया जा रहा है। विडंबना यह है कि इस संदर्भ में झूठे भविष्यवक्ता के रूप में उनका उपहास उस समय भी किया जा रहा है जब पीटर के लिए उनकी भविष्यवाणी सच होने वाली है। यीशु का व्यवहार हमारे लिए एक निमंत्रण है। शिष्य शिक्षक से बड़ा नहीं है और न ही सेवक स्वामी से बड़ा है, Matthew 10:24-25। और इसलिए यीशु इन आनंद के लिए आदर्श हैं। वह हमें उसका अनुसरण करने, उसके शिष्य बनने, राज्य की इस जीवन शैली को जीने के लिए आमंत्रित करता है। खैर, राज्य की इस जीवन शैली को जीना कितना महत्वपूर्ण है, हम इसे Matthew 5:13-16 में देख सकते हैं, जहां हम नमक और प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। यह हमारी पहचान को परिभाषित करता है। तुम नमक हो, तुम प्रकाश हो, राज्य सिर्फ हमारे व्यवहार के बारे में नहीं है, यह हमारे चरित्र के बारे में है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोई क्या करता है, यह इस बारे में है कि कोई कौन है। जो लोग इस राज्य के तरीके से नहीं जीते, वे बेस्वाद नमक की तरह हैं। यदि हम राज्य के मूल्यों को नहीं जीते हैं, यदि हम शिष्य होने का दावा करते हैं लेकिन हम शिष्यों की तरह नहीं रहते हैं, तो हम बेस्वाद नमक या अदृश्य प्रकाश की तरह हैं। भला बेस्वाद नमक कैसा होगा? कुछ लोगों ने मृत सागर के आसपास मिलने वाले अशुद्ध नमक की तुलना की है, जहां अन्य चीजें घुल जाएंगी और उस तुलना में कुछ मूल्य हो सकता है। मुझे लगता है कि एक और तुलना इसे और भी अधिक सीधे संबोधित करती है, और वह यह है कि जहां कोई, संभवतः एक ईसाई, पहली शताब्दी के अंत में बाद के रब्बी टारफिन के पास आया और रब्बी टारफिन से कहा, आप बेस्वाद नमक के साथ क्या करते हैं? आप उस नमक का क्या करते हैं जो अपना नमकीनपन खो देता है? उन्होंने उत्तर दिया कि आप इसे खच्चर के जन्म के बाद नमक दें। अब आप में से उन लोगों के लिए जो खेतों में बड़े नहीं हुए और जीव विज्ञान के विशेषज्ञ नहीं हैं, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि खच्चरों का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। वे बाज हैं, वे घोड़े और गधे के बीच से गुजरते हैं, और इसलिए खच्चरों का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। और उनका कहना था, यदि आप कोई मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछते हैं तो आपको मूर्खतापूर्ण उत्तर मिलता है। यदि नमक अपना नमकीनपन खो दे तो आप क्या करेंगे? यह अपना नमकीनपन नहीं खोता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? इसे नमक करो, यह बेकार है, बाहर फेंक दो। और यीशु इसे उसी तरह एक शिष्य के साथ कहते हैं जो राज्य के मूल्यों को नहीं जीता है। अच्छा, क्या वे सचमुच शिष्य हैं? यदि वे वास्तव में राज्य के शिष्य नहीं हैं, तो वे राज्य के लिए बेकार हैं। और अदृश्य प्रकाश के साथ भी ऐसा ही है। खैर, उस प्रकाश का क्या मूल्य जो आप देख नहीं सकते? बेशक आज हम अवरक्त और पराबैंगनी प्रकाश के मूल्य के बारे में जानते हैं। हम इसे चीजों के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस संदर्भ में वे इसके बारे में नहीं सोच रहे थे। यीशु जो उदाहरण देते हैं वे इस प्रकार हैं, ठीक है, आप एक बुशल या पेक माप के नीचे एक दीपक रखते हैं और इसलिए आप प्रकाश को छिपा देते हैं, आप प्रकाश को अस्पष्ट कर देते हैं ताकि आप इसे देख न सकें। यदि यह दिखाई नहीं दे रहा है तो शुरुआत में इसे जलाए ही क्यों? वह एक पहाड़ी पर बसे शहर की बात करता है। खैर, उनके पास उस तरह की रोशनी नहीं थी जैसी आज हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन मशालों आदि के साथ पहाड़ी पर बसा शहर रात में ग्रामीण इलाकों में अलग दिखता था। यरूशलेम को अक्सर दुनिया की रोशनी कहा जाता था, और इसलिए वह एक पहाड़ी पर बसा शहर भी होगा। यह वही बात दोहराता है जो यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। वह यशायाह अध्याय 42 में राष्ट्रों के लिए नौकर के मिशन, एक मिशन को प्रतिध्वनित कर रहा है। यशायाह 49 में हम पाते हैं कि नौकर की ओर से कोई इसे पूरा करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यीशु ने उस मिशन को पूरा किया, इसका मतलब यह नहीं है कि मिशन अभी भी भगवान के लोगों के लिए नहीं है। उनके शिष्यों के रूप में हमें भी उस मिशन को पूरा करना है। हमें संसार की ज्योति बनना है, लेकिन ऐसी रोशनी का क्या फायदा जिसे कोई देख नहीं सकता। लोगों को प्रकाश देखने और बदलने में सक्षम होना होगा। लेकिन 5:16 में वह कहते हैं, अपना प्रकाश इतना चमकाओ कि लोग उसे देखें और तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। और संदर्भ में अपने अच्छे कार्यों के बारे में बोलते हुए उन्हें अपने अच्छे कार्यों को देखने दें। लेकिन थोड़ी देर बाद अध्याय 6:1 में यीशु कहते हैं, लोगों को अपने अच्छे काम देखने न दें ताकि वे आपकी महिमा करें। अच्छा, क्या हमें लोगों को अपने अच्छे काम देखने देना चाहिए या क्या हमें लोगों को अपने अच्छे काम देखने नहीं देना चाहिए? यहाँ यीशु एक अच्छे यहूदी संत हैं, मुद्दे को स्पष्ट कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में कुछ विरोधाभास का उपयोग कर रहे हैं। यह नीतिवचन 26 की तरह है, जहाँ कहा गया है, किसी मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर मत दो, नहीं तो तुम भी उनके समान बन जाओगे। आह, परंतु मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा न हो कि वह अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ठहरे। अच्छा, यह कौन सा है, उन्हें उत्तर दे या उन्हें उत्तर न दें? खैर, दोनों में कुछ सच्चाई है ना? और दोनों में सच्चाई है जो यीशु यहां भी कहते हैं, लेकिन अंतर पर ध्यान दें। लोगों को तेरे भले काम देखने दो कि वे तेरे पिता की महिमा करें। अपने अच्छे कामों को लोगों को देखने न दें ताकि वे आपकी महिमा करें। मुद्दा यह नहीं है कि लोग आपके अच्छे काम देखते हैं या नहीं, मुद्दा आपके दिल का मकसद है। और यह कुछ ऐसा है जिसे कोई और नहीं जान सकता, केवल आप ही और हमेशा आपका स्वर्गीय पिता। इसलिए हमें उसके साथ अपने दर्शकों के रूप में रहने की जरूरत है, क्योंकि वह है जो हमें तब देखता है जब हम अकेले होते हैं। वह है जो हमारे विचारों को तब जानता है जब कोई और ध्यान नहीं दे रहा होता है या उन्हें जान सकता है। इससे भी मजबूत शब्द अनुसरण करते हैं, यदि हमें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है तो हम इस बात से घबरा सकते हैं। 5:17-20 तक तुम्हें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना चाहिए। 5:17 में यीशु कहते हैं, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, मैं इसे नष्ट करने नहीं आया हूँ, मैं उसे पूरा करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि यह तब तक नहीं टलेगा जब तक स्वर्ग और पृथ्वी टल न जाएं। यह पुराने नियम और अन्य यहूदी स्रोतों में कही गई बातों को प्रतिध्वनित करता है। और यीशु ने बाद में 24 में उसी वाक्यांश का उपयोग किया, यह कहने का एक तरीका है, यह स्थायी है, यह हमेशा के लिए है, यह ईश्वर का सत्य है। 5:17 मैं कानून पूरा करने आया हूँ। 5:18 कानून का एक भी छोटा सा झटका खत्म नहीं होगा। 5:19 सबसे छोटी आज्ञा का पालन करना आपको महान बनाता है, इसे तोड़ने से आपको सबसे कम नुकसान होता है। और 5:20 यदि आप राज्य में रहना चाहते हैं तो आपकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से अधिक होनी चाहिए। खैर, इससे कुछ लोग डर गए होंगे, क्योंकि बाहरी आज्ञाकारिता के मामले में फरीसी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सबसे महान आदर्श थे। मेरा मतलब है, एसेंस थे जो फरीसियों की तुलना में अधिक सख्त थे, और कुछ लोग सोचते हैं कि मृत सागर स्क्रॉल में जब चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वालों की बात की जाती है तो एसेंस ढिलाई बरतने के लिए फरीसियों का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन एसेंस फरीसियों की तरह सार्वजनिक दृष्टि में बहुत अधिक नहीं थे। हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से अधिक कैसे हो सकती है? फरीसी सप्ताह में 2 दिन उपवास करते थे। फरीसियों ने हर चीज पर सावधानी से इस तरह से दशमांश लिखा जिसके बारे में हम आगे चलकर देखेंगे। और यदि आप उनकी नैतिकता को देखें, कम से कम कागज पर, तो उनकी नैतिकता अक्सर यीशु से मिलती जुलती है। हमारी धार्मिकता उससे बढ़कर कैसे हो सकती है? यीशु यहाँ हृदय पर प्रहार कर रहे हैं क्योंकि इसे किसी भी बाहरी धार्मिकता से बड़ा होना चाहिए। इसे हृदय तक जाना होगा, एक ऐसा हृदय जिसे केवल ईश्वर ही बदल सकता है। आइए इनमें से कुछ को अधिक विस्तार से देखें। 518 न तो सबसे छोटा योड़ न ही सबसे छोटा अक्षर या अक्षर का स्ट्रोक गुजर जाएगा। खैर, हिब्रू में सबसे छोटा अक्षर एक योड़ था। और अन्य यहूदी शिक्षक भी थे जिन्होंने इस बारे में बात की। और यीशु एक व्यापक परिचित कहानी की ओर इशारा कर रहे होंगे जिसे लोग जानते होंगे। परमेश्वर ने सारै के नाम से एक योद लिया। जब सराय को सारा में बदल दिया गया तो उसके नाम से एक योड हटा लिया गया। और वह उत्पत्ति 17:15 में है। और रब्बी ने कहा कि यह योद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परमेश्वर को पुकार कर कहता रहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे तोरा से निकाल लिया है। तुमने मुझे अपमानित किया है। आप मुझे बाइबल में वापस कब डालेंगे? आप में से कितने लोग सोचते हैं कि यह सच्ची कहानी है? वैसे भी जैसा कि कहानी कहती है, यह योद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ईश्वर को पुकारता रहा। लेकिन संख्याओं की पुस्तक 13:16 में होशे के नाम में एक योद चिपका दिया गया था जब उसका नाम बदलकर यहोशू यहाशुआ कर दिया गया था। और इसलिए रब्बी ने कहा, आप देखिए, परमेश्वर के वचन से एक भी टुकड़ा दूर नहीं जा सकता। उनके पास एक और कहानी भी थी जहां एक योड़ कह रहा था, भगवान राजा सुलेमान ने मुझे बाइबल से उखाड़ दिया है, जिस पर भगवान ने जवाब दिया, 1000 सुलेमान उखाड़ दिए जाएंगे लेकिन मेरे वचन से एक भी योड़ नहीं हटेगा। तो यीशु इस ग्राफिक छवि की ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं, भगवान के वचन से कुछ भी नहीं मिटेगा। यह भगवान का वचन है, यह हमेशा के लिए है। और वह तोरा के बारे में, कानून के बारे में कह रहा था। और फिर 5:19 में, यदि आप इसे तोड़ते हैं, सबसे छोटी आज्ञा, तो आप राज्य में सबसे कम हैं। यदि आप इसे बनाए रखते हैं तो आप राज्य में सबसे महान हैं। अब वस्तुतः यह महान कहता है, लेकिन कोइन ग्रीक के इस काल में महान का उपयोग महानतम के लिए किया जा सकता था। मैथ्यू 22 में भी यही बात है जहां यीशु पहली और महान आज्ञा की बात करते हैं। वस्तुतः पहली और महान आज्ञा, लेकिन हम स्वाभाविक रूप से इसे पहली और सबसे बड़ी आज्ञा का अनुवाद करेंगे। किसी भी स्थिति में यदि आप इस छोटी सी आज्ञा का पालन करते हैं तो आप राज्य में सबसे महान हैं। वैसे भी जैसा कि कहानी कहती है, यह योद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ईश्वर को पुकारता रहा। तो यदि आप इसे तोड़ दें और उसी दिन रख दें तो क्या होगा? बीच में औसत आउट। यदि एक व्यक्ति इसे तोड़ दे और आप इसे उसी दिन तोड़ दें तो क्या होगा? तुम में से कौन राज्य में सबसे छोटा होगा? यह गणित के प्रमुखों के लिए राज्य में आपकी स्थिति की सटीक गणना करने के लिए एक खेल के रूप में नहीं था। यह बोलने का ग्राफिक तरीका था। आपके पास एक रब्बी था जिसने कुछ ऐसा ही किया था। वह एक दिन कक्षा में आता था और कहता था, यह छात्र यहाँ है, यह मेरा सबसे प्रतिभाशाली छात्र है। यदि यह छात्र संतुलन के एक पैमाने पर होता और पूरी दुनिया दूसरे पैमाने पर होती, तो यह छात्र बौद्धिक कौशल में पूरी दुनिया पर भारी पड़ता। अगले दिन रब्बी आता है और दूसरे छात्र की ओर इशारा करके कहता है, यह छात्र इतना प्रतिभाशाली है कि यदि वह तराजू के एक पैमाने पर होता और पूरी दुनिया दूसरे पैमाने पर होती, तो वह बाकी दुनिया पर भारी पड़ता। खैर, यह कैसे हो सकता है जब यह छात्र यहाँ है? क्या उन्होंने इस छात्र से इस छात्र में रात्रि मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया था? क्या हुआ? यह बात को पुष्ट करने और आपका ध्यान आकर्षित करने का एक ग्राफिक अतिशयोक्तिपूर्ण तरीका था। खैर, जब रब्बियों ने सबसे बड़ी और सबसे छोटी आज्ञाओं के बारे में बात की, तो मैंने यह रॉबर्ट जॉनसटन से सीखा, जो हाल ही में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट सेमिनरी से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने इस पर एक अच्छा लेख लिखा। रब्बी सबसे बड़ी और सबसे छोटी आज्ञाओं की बात करते हैं। खैर, सबसे बड़ी आज्ञा, उनमें से कई ने सोचा अपने माता पिता का सम्मान करना था और आप जीवित रहेंगे। और यह सिर्फ कुछ रब्बियों का मामला नहीं है। रब्बी इस बात पर असहमत थे कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी थी, लेकिन इस विशेष कहावत में वे कह रहे थे, ठीक है, माता पिता का सम्मान करना है। जोसेफस यह भी कहता है कि यह सबसे बड़ी आज्ञा थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः ऐसे बहुत से लोग थे जो उस समय ऐसा सोचते थे। लेकिन उन्होंने इतना तो कहा कि यदि तुम साथ आओ और किसी पक्षी का घोंसला पाओ और बच्चों को खाने के लिए बाहर ले जाओ, तो मातृ पक्षी को पीछे छोड़ दो। उन्होंने कहा कि यह सबसे छोटी आज्ञा है। लेकिन उन्होंने कुछ नोटिस किया। दोनों आज्ञाओं के साथ तोरा ने कहा, ऐसा करो और तुम जीवित रहोगे। और रब्बी ने कहा, न केवल भूमि पर लंबे समय तक जीवित रहो, बल्कि वास्तव में पृथ्वी पर भी लंबे समय तक जीवित रहो। तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। उन्होंने कहा, ताकि सबसे छोटी आज्ञा का प्रतिफल और सबसे बड़ी आज्ञा का प्रतिफल एक समान हो। और सबसे छोटी आज्ञा को तोड़ने और सबसे बड़ी आज्ञा को तोड़ने का दंड भी एक समान है। अच्छा, वे क्या कह रहे थे? रब्बियों ने स्वीकार किया कि हर कोई कभी न कभी पाप करता है, यहां तक कि वे भी। उनका कहना था कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं में से कोई एक चुन नहीं सकते। आप यह नहीं कह सकते, ठीक है, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाऊंगा जिससे मेरी शादी नहीं हुई है। आप चुन चुन कर यह नहीं कह सकते कि ठीक है, मैं उस आज्ञा को नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं अन्य आज्ञाओं को बहुत अच्छी तरह से रखता हूं। तुम्हें परमेश्वर के सभी वचनों का पालन करना चाहिए। कानून के एक टुकड़े को यह कहते हुए उतार देना कि ठीक है, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है, तोरा के पूरे जुए को उतार फेंकने के समान था। और रब्बी ने कहा कि यह धर्मत्याग था। ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी पाप नहीं किया, लेकिन आप यह नहीं कह सकते, ठीक है, मैं कानून या कानून के हिस्से को अस्वीकार करता हूं। और फिर भी यीशु 520 में कहते हैं, तुम्हें शास्त्रियों और फरीसियों से अधिक धर्मी होना चाहिए। मुंशी, ठीक है, आपके पास गांव के मुंशी थे जो सिर्फ व्यावसायिक दस्तावेजों को संभालते थे। वे आधे साक्षर थे, कम से कम आधे साक्षर थे, इसलिए वे व्यावसायिक दस्तावेज निष्पादित कर सकते थे। लेकिन जिन शास्त्रियों के बारे में हम गॉस्पेल में पढ़ते हैं, वे टोरा के शिक्षक हैं। वे बच्चों को निर्देश दे सकते हैं या वे वही हो सकते हैं जिन्हें हम बाद में रब्बी कहते हैं। वे लोग थे जो धर्म ग्रंथों तोराह में साक्षर थे। फरीसी एक विशेष विचारधारा के अनुयायी थे जो बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करता था। जोसेफ्स बार बार उनका वर्णन करता है कि वे टोरा की व्याख्या में बहुत सूक्ष्म और बहुत सटीक हैं। और व्याख्या की एक पूरी परंपरा पर निर्भर करता है जिसके साथ सदूकी सहमत नहीं थे, लेकिन वे आम लोगों द्वारा बहुत पसंद किए गए थे। वे अपने धार्मिक आचरण के कारण बहुत लोकप्रिय थे और बहुत सम्मानित थे। भला हम फरीसियों से अधिक धर्मी कैसे हो सकते हैं? शेष प्रवचन में यीशु हमें इसके बारे में बताते हैं। कैसे? खैर, कानून 521 में कहता है, तुम हत्या नहीं करोगे। फरीसी कहेंगे, मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन यीशु 522 में कहते हैं, तुम मारना नहीं चाहोगे। कानून कहता है कि तुम व्यभिचार नहीं करोगे। खैर, यीशु इसे 527 और 31 में दो बार उद्धृत करते हैं और 528 और 32 में कहते हैं, तुम व्यभिचार नहीं करना चाहोगे। आप बेवफा तलाक के द्वारा अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। इसलिए यीशु कानून के मूल में जाते हैं, न कि सिर्फ आप कैसे व्यवहार करते हैं, बल्कि आप कौन हैं। और यह कुछ ऐसा है जिसे लोग अपने आप नहीं बदल सकते, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें ईश्वर द्वारा बदलने की जरूरत है। एक बच्चे की तरह राज्य प्राप्त करना, हमारे पिता पर निर्भर होना जो हमें नया बनाता है। वह वही है जो हृदय परिवर्तन करता है। 6 बार यीशु मूसा की व्यवस्था के मर्म तक गए। अब इनमें से प्रत्येक मामले में फरीसी सैद्धांतिक रूप से उससे सहमत होंगे, लेकिन याद रखें, सिद्धांत रूप में यीशु से सहमत होना एक बात है, हृदय में राज्य के जुए के प्रति समर्पित होना दूसरी बात है। कानून कहता है हत्या मत करो। यीशु कहते हैं कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। कानून कहता है व्यभिचार मत करो। यीशु कहते हैं कि वासना मत करो। कानून कहता है व्यभिचार मत करो। यीशु कहते हैं तलाक मत दो। कानून कहता है कि झूठी कसम मत खाओ। यीशु कहते हैं कि इतनी सत्यनिष्ठा रखो कि तुम्हें शपथ की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कानून कहता है आंख के बदले आंख। यीशु कहते हैं कि अपने शत्रुओं का विरोध मत करो। कानून कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। यीशु कहते हैं कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। कानून पाप को सीमित करता है और आप यही अपेक्षा करते हैं। एक नागरिक कानून सिर्फ पाप को सीमित कर सकता है। इससे हृदय परिवर्तन नहीं होता। इसे लागू करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि कानून दिल को संबोधित कर सकता है, आपको लालच नहीं करना चाहिए, परंतु व्यवस्था पाप को सीमित करती है। यीशु पाप से मुक्ति दिलाने आए। कानून हमें अधिकार की जानकारी देता है, लेकिन यीशु यह सुनिश्चित करने के लिए आए थे कि जैसा कि हमेशा लक्ष्य था, कानून हमारे दिलों में लिखा जाए, ताकि यीशु हमें केवल सूचित न करें, वह हमें बदल दें। 5:21 से 48 तक वह मूल रूप से पुराने नियम के पाठ पर मिड्राशिम दे रहा है। वह पुराने नियम के पाठ की व्याख्या कर रहा है। वह कह रहा है, जो मैं तुझसे कहता हूँ वह तूने सुना है। खैर, वह इसे विशेष अधिकार के साथ कहता है जब वह कहता है, आमीन मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन कुछ लोग उस बात से चूक गए हैं जिसके बारे में सोलोमन शेक्टर ने 20वीं सदी की शुरुआत में ही बताया था। सोलोमन शेक्टर एक रब्बी विद्वान थे और उन्होंने बताया कि जैसे वाक्यांश आपने इसे कहते हुए सुना है और जैसे वाक्यांश मैं आपसे कहता हूँ रब्बियों में प्रमाणित हैं। अन्य यहूदी शिक्षकों ने ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया, और जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको इसे इस तरह से समझाता हूँ। आपने सोचा है कि इसका मतलब केवल इतना ही है, लेकिन वास्तव में इसके निहितार्थ इससे भी परे हैं। और यीशु यही कर रहे हैं। वह कानून का मर्म समझा रहे हैं। रब्बी अक्सर कानून के चारों ओर घेरा बना देते थे। उन्होंने कवनह की पुष्टि की, जिसे वे कवनह कहते थे, हृदय का इरादा। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन तोरा के लिए उन्होंने कानून के चारों ओर एक बाड़ बनाने की कोशिश की। तो वे यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हम यह कैसे कर सकते हैं ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि हम गलती से आज्ञा का उल्लंघन न करें। और वे उससे निपटेंगे जिसे कुछ बाद के रब्बियों ने पिलपुल भी कहा, चर्चाएं, जैसे अच्छा क्या यह कोशेर है, क्या सप्त के दिन मुर्गी द्वारा दिया गया अंडा खाने की अनुमति है। आपको यह पता लगाने के लिए ये सभी विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने होंगे, खैर मैं यह कैसे सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मैं गलती से कानून का उल्लंघन नहीं करता हूँ। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कानून का उल्लंघन न करें, वे कानून से थोड़े सख्त होंगे। लेकिन यीशु बाढ़ के पास आते हैं, इसलिए कहें तो एक अलग तरीके से। वह यह सुनिश्चित करने के लिए बाहर की ओर नहीं जाता है कि आप गलती से कानून के इस या उस सिद्धांत का उल्लंघन न करें। वह दिल के लिए जाता है। यदि हम वास्तव में ईश्वर के लिए तरसते हैं, यदि हम वास्तव में ईश्वर की धार्मिकता के लिए तरसते हैं, तो एक हृदय कैसा दिखेगा जो वास्तव में इस कानून में आनंदित होता है, जो वास्तव में इसे इसकी पूर्ण सीमा तक ले जाता है, जो ईश्वर जो चाहता है उसके उद्देश्य और हृदय तक जाता है, इस कानून में व्यक्त किया जाने वाला व्यक्ति। ईश्वर इसकी परवाह करता है कि आप कौन हैं, न कि केवल आप क्या करते हैं। मारना नहीं चाहते, व्यभिचार नहीं करना चाहता, अनुचित तलाक लेकर अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात न करें, प्रतिज्ञाओं से अधिक सत्यनिष्ठा रखें, कानूनी विरोध से बचें, सक्रिय रूप से अपने दुश्मनों से प्यार करें और उनकी मदद करें। और फिर श्लोक 48 में बस मामले में हम कहते हैं, ठीक है, मैंने उसमें से कुछ भी नहीं तोड़ा है। मैंने आपके द्वारा दिए गए किसी भी विशिष्ट उदाहरण को नहीं तोड़ा है। वे श्लोक 48 में कहते हैं, सिद्ध बनो और सिर्फ नियमित रूप से परिपूर्ण नहीं। कोई कह सकता है, ठीक है, मैंने इनमें से किसी भी आज्ञा को नहीं तोड़ा है, मैं परिपूर्ण हूं। यीशु कहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता के समान परिपूर्ण बनो। और अगर हमने सोचा कि उसके उदाहरण संपूर्ण थे, ठीक है, आप जानते हैं, उसने दिल में व्यभिचार करने की बात की थी, लेकिन उसने दिल में व्यभिचार करने की बात नहीं की थी, और मैं अकेला हूँ, और वह व्यक्ति मैं सिंगल होने की चाहत रखता हूँ, इसलिए यह मुझ पर लागू नहीं होता। नहीं, अपने स्वर्गीय पिता के समान परिपूर्ण बनो। दूसरे शब्दों में यह हम सभी के लिए एक लक्ष्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य बनाने के लिए आपको पहले से ही यह सब हासिल करना होगा, हालांकि आपको शास्त्रियों और फरीसियों से बेहतर होना होगा, तुम्हें एक परिवर्तित हृदय रखना होगा। लेकिन यह कह रहा है, फिर भी यह एक लक्ष्य है। हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य के कारण हमेशा सीख सकते हैं और अधिक बढ़ सकते हैं। ठीक है, इन्हें देखते हुए, जिन्हें कभी कभी प्रतिपक्षी भी कहा जाता है, उन्हें देखते हुए आपने इसे कहते हुए सुना है, लेकिन मैं आपको और अधिक विस्तार से बताता हूँ। जब यीशु कहते हैं, तो तुमने यह सुना है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, ग्रीक में आप कुछ तरीकों से लेकिन कह सकते हैं। एक है डे, डे एक छोटा लेकिन है। इसके बजाय अल्लाह एक बहुत मजबूत लेकिन है। यह एक विरोधाभासी लेकिन है। यीशु यहां डी का उपयोग करते हैं। वह किसी मजबूत परंतु का प्रयोग नहीं करता। वह एक छोटे लेकिन का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि आपने इसे कहते हुए सुना है, मैं आपसे कहता हूं, विरोधाभास में नहीं बल्कि विकास में। यह वैसा ही है जैसा पौलुस 1 कुरिन्थियों 7 में यीशु की शिक्षा के साथ करता है। यही यीशु ने कहा था, अब मैं आपसे यही कहता हूं। हालांकि मनुष्य पर उद्घाटन अधिकार का एक ग्राफिक बयान है, आम तौर पर यह वह तरीका नहीं है जिस तरह से आप अपने शब्दों की प्रस्तावना करते हैं। यह सामान्यतः वह तरीका है जिससे आप उनका निष्कर्ष निकालते हैं। यीशु कहते हैं कि कानून कहता है कि तुम हत्या नहीं करोगे। यीशु इससे सहमत हैं, लेकिन कहते हैं कि यदि आप वास्तव में कानून से सहमत होना चाहते हैं तो यह उससे भी आगे जाता है। यदि आप अपने भाई या बहन से नाराज हैं तो वह कहता है कि आप निर्णय के संकट में हैं। अगर आप अपने भाई या बहन को राका कहते हैं, राका, कुछ लोग इसका अनुवाद खाली दिमाग के रूप में करते हैं। इसका मतलब खाली या शून्य या मूल्य से रहित है, जो मुझे लगता है कि यही मुद्दा है। किसी काम का नहीं। किसी को बुलाओ, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम बेकार हो, तुम बेकार हो। आप किसी को राका शून्य कहते हैं। यीशु कहते हैं कि आप वस्तुतः इस सुनेड्रियन महासभा परिषद अदालत सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी हैं। तुम अपने भाई या बहन को मूर्ख कहते हो, मोरे, तुम उग्र गेहन्ना या हिन्नोम नरक के भागी हो। अब क्या यह पाप की बढ़ती हुई श्रेणी और निर्णय की बढ़ती हुई श्रेणी फैसले से, शायद निचली अदालत से सैनहेदरिन सर्वोच्च न्यायालय तक जा रही है और फिर नरक के लिए उत्तरदायी हो रही है? क्या किसी को बेकार व्यक्ति कहने की तुलना में मूर्ख कहना इतना बुरा है? मुझे लगता है कि शायद ये सभी मोटे तौर पर बराबर हैं, लेकिन ये एक ही बात कहने के तरीके मात्र हैं। इसे अलग अलग तरीके से लिया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको मेरी व्याख्या से सहमत होना होगा, लेकिन संकट निर्णय का मतलब भगवान का निर्णय हो सकता है। महासभा, मुझे नहीं लगता कि यह सांसारिक महासभा है। इसराइल के सर्वोच्च न्यायालय ने किसी को खाली दिमाग कहने या किसी को बेकार कहने के अपराध के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चलाया होगा। महासभा के लिए यह कोई कार्रवाई योग्य अपराध नहीं था। हालांकि यहूदी ग्रंथ भी एक स्वर्गीय महासभा, एक स्वर्गीय अदालत की बात करते हैं, और यह इस संदर्भ को समझ में आएगा क्योंकि यीशु इस कथन के बाद निम्नलिखित छंदों में बोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं, यदि आपको न्यायाधीश के सामने लाया जाता है, ठीक है, वह स्वर्गीय न्यायाधीश के बारे में लाक्षणिक रूप से बात कर रहा है और फिर वह सब उग्र गेहन्ना के समानांतर होगा। आपको फैसले का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें स्वर्गीय अदालत का सामना करना पड़ेगा। आप उग्र गेहन्ना का सामना करेंगे और वह जिस तरह से इसे कहता है वह वास्तव में डरावना है, क्योंकि गेहन्ना की कल्पना वैसे भी आमतौर पर उग्र गेहन्ना के रूप में की गई थी, इसलिए इसे उग्र गेहन्ना कहने का मतलब है कि यह उग्र गेहन्ना है। अब यीशु ने दूसरों को यौन रूप से लालच करने के विरुद्ध भी चेतावनी दी। अन्य जातियों के बीच कई लोगों ने सोचा कि यह बिल्कुल सामान्य बात है। जादुई मंत्र अक्सर इस बात से संबंधित होते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप यौन रूप से पसंद करते हैं तो आप उसे कैसे अपने जैसा बना सकते हैं। खैर, यहूदी लोगों ने नहीं सोचा था कि यह एक अच्छा विचार था, विशेष रूप से यहूदी और गैलीलियन यहूदी लोग और आगे पूर्व में, और यहूदी महिलाएं आमतौर पर पुरुष वासना को रोकने के लिए सिर ढकती थीं, क्योंकि भूमध्य सागरीय दुनिया में महिलाएं आमतौर पर ज्यादातर कपड़े ढकती थीं उनके शरीर के बाकी हिस्से। इसलिए जब आप पुरुष की वासना के बारे में पढ़ते हैं तो आमतौर पर आप पुरुषों के बारे में पढ़ते हैं जो महिलाओं के पैरों, उनके हाथों या उनके सिर की लालसा करते हैं, लेकिन पूर्वी भूमध्य सागरीय और विशेष रूप से यहूदी संस्कृति में महिलाएं अपने बालों को ढकती हैं। पुरुष वासना को रोकने के लिए बालों को पूरी तरह से ढकना पड़ता था। दिलचस्प बात यह है कि इस अवधि के कुछ अन्य दस्तावेजों के विपरीत यीशु ने महिलाओं पर पुरुष वासना का दोष नहीं लगाया। उनका कहना है कि पुरुष को ऐसा करना ही होगा। मेरा मतलब है, हम सभी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। पुरुष और महिलाएं कुछ निश्चित तरीकों से कपड़े न पहनकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वासना करता है वह अंततः इसके लिए जिम्मेदार है। इसका दंड नरक अग्नि है। यीशु इसके बारे में ठोकर खाने के संदर्भ में बात करते हैं, जो उस समय अक्सर धर्मत्याग के लिए एक वाक्यांश था, जैसे कि सिराज की किताब में। यहाँ नैतिक सिद्धांत वैवाहिक और विवाह पूर्व निष्ठा का सिद्धांत है। अपने जीवन साथी या अपने भावी जीवन साथी के प्रति वफादार होने का मतलब है कि आप हर किसी की ओर नहीं देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम इसका एक सकारात्मक उदाहरण जोसेफ द्वारा खुद को नियंत्रित करने में देखते हैं, और मैथ्यू 14 में हेरोदेस एंटिपास के साथ इसका एक नकारात्मक उदाहरण देखते हैं। इस पाप के लिए यहाँ कौन से उपाय सूचीबद्ध हैं? खैर, जो समाधान हमने विशेष रूप से सूचीबद्ध किया है, यीशु कहते हैं कि यदि तुम्हारी आंख तुम्हें ठोकर खिलाती है तो उसे फोड़ दो, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे फाड़ डाल। और इसलिए मैं आमतौर पर कक्षा में चारों ओर देखने वाले अपने छात्रों से कहता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि आप में से किसी ने भी कभी वासना का पाप नहीं किया है, क्योंकि आप सभी की आंखें हैं। और फिर वे हंसते हैं, कभी कभी घबराहट भरी हंसी। लेकिन अगर हम यहूदी समकालीनों की तुलना करें तो जो कोई भी दूसरे की कामुकता का लालच करने के उद्देश्य से देखता है वह इस कृत्य का दोषी है। मृत सागर स्क्रॉल में यह इसके बारे में और अन्यत्र बात करता है। मैं एक बार एक आराधनालय का दौरा कर रहा था और रब्बी, जो मेरा मित्र था, बहुत दयालु शब्दों में यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बीच के अंतर को समझा रहा था। अब वह एक सुधारवादी रब्बी था, इसलिए ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि एक रूढ़िवादी रब्बी ऐसा कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उन्होंने कहा, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बीच एक अंतर यह है कि ईसाई मानते हैं कि वासना गलत है, लेकिन यहूदी मानते हैं कि थोड़ी अच्छी स्वस्थ वासना में कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि वह यतिजिरहारा, बुरे आवेग के बारे में यहूदी शिक्षा के संदर्भ में सोच रहा था, जहां यहूदी शिक्षा में, ठीक है, अगर आपके पास कम से कम कुछ भी नहीं था तो आपके पास कोई कामेच्छा नहीं होगी, आप पुनरुत्पादन करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन बाद में मैंने उसकी ओर ध्यान दिलाया, मैंने कहा, वास्तव में यहूदी परंपरा वासना के खिलाफ बोलती है। यह मृत सागर स्क्रॉल में स्पष्ट है, यह 12 कुलपतियों के टेस्टामेंट्स में स्पष्ट है। वास्तव में दूसरी शताब्दी की शुरुआत में रब्बी इश्माएल के स्कूल में इन रब्बियों ने कहा, ठीक है, यदि आप खुद को यौन रूप से उत्तेजित करते हैं तो यह ऐसा है जैसे आपने व्यभिचार किया है। लेकिन मैंने कहा, यदि आप उनमें से किसी को भी यहूदी के रूप में पर्याप्त नहीं मानते हैं तो 10 आज्ञाओं के बारे में क्या? 10 आज्ञाओं में से 7वीं कहती है कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। लेकिन 10 आज्ञाओं में से 10वें में कहा गया है, तुम्हें अपने पड़ोसी की पत्नी साथ ही अन्य चीजों का लालच नहीं करना चाहिए। तो आप जानते हैं, आप चोरी नहीं करते, उन चीजों का लालच भी नहीं करते, लेकिन अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच भी नहीं करते। वास्तव में जब यीशु कहते हैं कि वासना मत करो, तो यहाँ शब्द बिल्कुल वही शब्द है जिसका उपयोग निर्गमन 20 और व्यवस्था विवरण 5 के ग्रीक संस्करण में किया गया है। यीशु कह रहे हैं कि तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने पड़ोसी की पत्नी की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह इस बारे में बात नहीं कर रहा है, ओह, आप कुछ देखते हैं, दूसरे लिंग का एक सुंदर व्यक्ति, उसी तरह जैसे आप एक पेड़ को देखते हैं और कहते हैं, ओह, यह एक अच्छा पेड़ है। यह वह जगह है जहां आप इसे अपने लिए रखना चाहते हैं। और यह कुछ ऐसा है जो केवल क्षणिक सराहना नहीं है। यह कुछ ऐसा है जहां व्यक्ति इस पर ध्यान कर रहा है, इसके बारे में सोच रहा है, इसकी इच्छा कर रहा है। यीशु कहते हैं, उस स्तर पर, तुम पहले ही अपने हृदय में व्यभिचार कर चुके हो। और फिर यीशु तलाक के द्वारा अपने जीवन साथी को धोखा न देने के बारे में बात करते हैं, और हम इसके बारे में अगले भाग में बात करेंगे। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह माउंट पर उपदेश मैथ्यू 5 पर 17:7 है।